के समान नील है, उस पर मुक्त बिंदु के समान झलकते हैं श्वेत बिंदु, उस पर इसको श्रम रुचक है। यद्यपि श्री कृष्ण के मुख पर श्रम है, श्रम से तात्पर्य यहां परिश्रम के पसीने पसीना बिंदु जहां तहां, पर ऐसे मुख से भी श्रीकृष्ण उत्तमम उन्नयन, हम लोगों के दृष्टि को, हम लोगों की आंखों को उत्सव उत्सवम उच्च प्राप्त, उत्सव का अर्थ है हर्ष आनंद, हम लोगों की आंखों को अच्छे आनंद हो रहा है, हमारे आनंद को बढ़ाते हुए यह चंद्रमा उदित हो रहा है, ये चंद्रमा आ रहा है, कृष्ण चंद्र आ रहा है। देवकी जठर भुरुडु राजा, उस पर एक भक्त की इच्छा थी कि मैं भगवान के जन्म के विषय में कुछ गाऊं। यह पद हम लोगों के लिए अपने सुहृद और भोजपुरी के कवि श्री सिपाही पांडे जी मनमऊ जी हैं, वो प्रायः भागवत सप्ताह में गाते रहते हैं, उनकी कविता है उसे गाया जाएगा थोड़ी देर के 5-6 मिनट के लिए। कौन बजाएंगे? मार्दंगिक कीर्तन में कल शाम को बजा रहे थे दिल्ली के भक्त, हाँ आ गए आए। जन्म की बधाई गाई जाएगी, माइक दीजिए, देखिए कि कौन गा रहा है, माता जी में से कोई गाए। कुछ कथा हो जाए, मद बिघूरि तलोचन ईश, मानद सुहृदाम्बन माली, बदर पांडु बदनो मृत गंदन, बदर मंडयन कनक कुंडल लक्ष्मिया, जदुपति धीरज राज विहार, जदुपति धीरज राज विहार, जामिनी पति वैश दिनांते, मुदित वक्त उपय
यात दुरंतम मुदित वक्र उत यात दुरंतम मोचयन गज गवान अति संभ्रमेण काश्चित समीप्यम काश्चित समीपम आयातम आयांतम कथयन्ति ईशति। श्री कृष्ण बिल्कुल गांव के निकट आ गए हैं, अब प्रवेश करने वाले हैं। उनको इस तरह देख करके कोई कोई गोपियां इस तरह से कहती हैं, ईशत मद विघूर्णित लोचन मदेन विघूर्णित लोचने जस सुहृदां पुरोहितादि मातुलादि भ्रातादि दासादि ताम्बुलिकादीनां यथोचितं आशीर्वादादि कृतां मानुद प्रणाम आलिंगन सस्मित संभाषण प्रणयावलोक नर्मावलोक कृपावलोकनादि लक्षणम यथोचितम ददाति इति तथा स वनमाली बदर पांडु वदन ईशत पक्व बदरवत पांडुरम वदनम जस्य स कनक कुंडल लक्ष्म्या कनक कुंडलयो हो लक्ष्म्या कांत्या मृदुगंडम मृदु कोमलौ गंधौ कपोलौ जस्मिन् तत् वदनम् मंडयन् कोमल गंडस्थलम् वा शोभयन् द्विरद राज विहारः द्विरद राजस्य ऐरावतस्य इव विहार जस्य स मुदित वक्त्रः मुदितम् प्रसन्नम् वक्त्रम् वदनम् जस्य स एषः जदुपतिः जदूनाम् गोपानाम् पतिः श्रीकृष्णः दिनान्ते सायंकाले ब्रजगवाम् दिनतापम् मोचयन् जामिनीपतिः चन्द्रः इव उपयाति समीपम् आयाति। इस तरह परम आनंद में श्री गोपीजन इस लीला का वर्णन कर रही हैं। ब्रज में सबसे आनंददायक समय यही होता है जब श्री कृष्ण वन से गोचारण करके लौटते हैं। प्रतिदिन एक बहुत बड़ा उत्सव जैसा होता है, उत्सव मतलब खुशी आनंद श्री कृष्ण को देख करके। तो श्री गोपी जन इस तरह से कह रही हैं कि श्री कृष्ण हर्ष के कारण मद कहे अर्थ हर्ष मद हर्ष में प्रयुक्त हुआ मद विघूरित लोचनी सुन हर्ष के कारण विशेष करके श्री गोपियों का दर्शन करके श्री कृष्ण को जो सुख मिलता है उसी को यहां मद शब्द से व्यक्त किया जा रहा है। मद हर्ष से उनकी आंखें ईशत घूर्णित होती हैं विघूर्णित थोड़ा थोड़ा इशारा करते हैं हंसते हुए मद विघूरित लोचन ईशत मानद सुहृदां वनमाली और वन की माला फूल की फ्रेश माला लगाए हुए हैं सुहृदां वनमाली सुहृदां मानद अपने सुहृदों को श्रीकृष्ण मान देते हैं सम्मान देते हैं। श्रीकृष्ण के कई प्रकार के सुहृद हैं मित्र हैं पुरोहित हैं मामा हैं और भी कई तरह के हैं। ब्रज में सब संबंधी भरे पड़े हैं श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण को तांबुल खिलाने वाले तांबुलिक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तांबुलिक और भी तरह कई प्रकार के सुहृद हैं जो श्री कृष्ण के प्रति आशीर्वाद देते हैं श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं
वन से आए हैं तो कोई आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव, सुखी भव, ये सब बहुत प्रकार के आशीर्वाद देते थे। उनको ये मान देते हैं श्री कृष्ण मानद, सखा को सखा जैसा मान देते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि किसी पर हंस कर देखते हैं, किसी पर कृपा से दृष्टि से देखते हैं। कृपा से देखते देखना और हंस करके स्नेह से देखना, ईश्वित पूर्वक देखना, दोनों में अंतर है। किसी किसी को हंस करके देखते हैं, यदि बहुत देर के बाद भेंट नहीं हुई है, केवल 7-8 घंटे के बाद भेंट हुई है, लेकिन वह उनके लिए ऐसा लग रहा है जैसे कई करोड़ युग के बाद कृष्ण से मिलन हो रहा है। तो उनका वो मान करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, किसी का आलिंगन करते हैं, श्री कृष्ण के वन से आते हैं, किसी के तरफ प्रेम से देख देते हैं, जैसे गोपियां श्री कृष्ण को दोनों तरफ से छिप करके देख रही हैं, तो अपने गुरुजनों की दृष्टि बचा करके बचाते हुए श्री कृष्ण उन पर भी देखते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। ये है मान, जो जैसा होता है उसका वैसा मान किया जाता है। इस विषय में श्री कृष्ण परम पटु है। पिताजी को प्रणाम करना, पुरोहित जी को प्रणाम करना और किसी का आलिंगन करना, इसके साथ ही किसी पर मुस्कुरा करके देखना और श्री गोपियों के तरफ स्नेह से देखते, कृपा करके देखते, दिन भर मेरे विरह की ज्वाला में दग्ध हो गई, तो उन पर मानो वे अपने कृपा दृष्टि से देखते। और भी जो ब्रज में अपने स्वजन रहे थे, वन में नहीं गए थे, उनको स्नेह से देखते हैं, कृपा से देखते हैं, मिलते हैं, कुछ पूछते हैं, इस तरह प्रवेश कर रहे हैं। अथवा ईषद ईषद मानद थोड़ा ही मान देते हैं, थोड़ा मान देते हैं इसलिए कि बहुत लोग हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा करके देखना, थोड़ा मान देते हैं क्योंकि उनका उनको उनको मान की कितनी अपेक्षा है कि श्री कृष्ण हमसे मिलें। जैसे गोपियों की इच्छा होती है कि श्री कृष्ण हमसे मिलें, हम उनका आलिंगन करें, लेकिन इतना ज्यादा मान भगवान नहीं दे सकते हैं और समाज विपरीत है। तो ईसप मानद थोड़ा मान दे रहे हैं। सिर्फ सनातन गोस्वामी प्रसाद जी दोनों तरफ ईसप शब्द को लगा रहे हैं, ईसप विघूर्णित लोचन और ईसप मानद स्वस्व हृदय बनमान। बदर पांड बदलो दिन भर गाय चराते चराते और थक गए हैं, परंतु फिर भी इनका मुख बहुत सुंदर है। यहां पर सांवले मुख को पके हुए बेर फल के समान कह रहे हैं गोपी। जब बदर बेर फल पक जाता है, जब बदर का फल पक जाता है तो थोड़ा थोड़ा पीला लगने लगता है, लाल लाल थोड़ा पीला, ऐसे परिश्रम करके आए हैं तो मुख लाल है। लाल जब होगा सांवला मुख तो वो पीला हो ही जाएगा, बेर फल के समान है। बदर पांडु, बदर पांडु, पांडु मतलब पीला, पके हुए बदर के समान पांडु बदन मुख मृदुगंधम, जिस बदन में जिस मुख में मृदु कोमलौ गंडौ तप, जिस गंड मतलब गाल, जिस मुख कमल में अतिशय सुंदर मृदु गाल है और उस गाल को कुंडल चुमते रहते हैं, झूमते हैं तो कृष्ण के गाल पर पड़ते हैं, तो ऐसी उत्प्रेक्षा की जा रही है कुंडल नहीं है, ये लक्ष्मी जी हैं दो रूप में, वे अपने प्रियतम के मुख को चूमती रहते हैं, गाल पर ही झलकते हैं कुंडल, कृष्ण कुंडल। तो कनक कुंडल लक्ष्म्या मंडयन, श्रीकृष्ण अपने दोनों गाल को
और अधिक सुंदर करते रहते हैं। कनक कुंडल लक्ष्मी से, कांति से, सांवले गाल पर, बदन पर जब स्वर्ण कांति पड़ती है, तो एक विशेष प्रकार की छटा होती है, क्योंकि कुंडल हिलते रहते हैं, अतः कई प्रकार के रंग बनते रहते हैं और प्रकाश पड़ता है। इस तरह से श्री गोपियां वर्णन कर रही हैं कि कनक कुंडल की लक्ष्मी से, कांति से अपने मृदुगंड को, मृदुगंड जिसमें है दो गाल हैं, तो ऐसे मुख को, बदन को, मंडल, श्रीकृष्ण का मुख कमल और सुंदर लगता है। और जदुपति द्विरज राज बिहार, जदुपति जदव गोपा एवं बिहार, यहां पर गोपों के लिए ही यहां जादू शब्द का प्रयोग किया गया, कि वास्तव में गोप भी जादव हैं, एक ही वंश से जादू महाराज और ये नंद महाराज हैं। तो यहां पर जादूपति जो कहा गया है वो है मधुपति, अर्थात गोपपति। गोपपति कैसे हैं, कैसे चाल चल रहे हैं, ये अटारियों पर चढ़ करके कृष्ण को देख रही हैं या ऊंचे स्थान पर गलियों से। द्विरद राज, द्विरद, रद का अर्थ होता है दांत, जिसके दो दांत होते हैं बड़े बड़े, उसको द्विरद, तो हाथी, गज, और गजों का राजा कौन है, ऐरावतो गजेन्द्राणा, भगवान कहते हैं मैं गजेंद्रों में ऐरावत हूं। तो ऐरावत जैसी चाल भगवान चल रहे हैं मस्त, और वैसा ही उनका विहार है, और भी चलना, लीला करना। तो द्विरद राज विहारो जामनी पति रिवाई सदिनांत ऐसा, जामनी पति ही यह रात्रि पति दिशानाथ चंद्रमा उदित हो रहा है, उदित वक्त उपयाति, श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न मुख में है, प्रसन्न मुख है, मुदित का अर्थ प्रसन्न, वक्त मतलब मुख है, अक्षय मुदित वदन है, ईश्वर उपयाति निकट आ रहे हैं, निकट आ रहे हैं, उप का अर्थ निकटम, याति मतलब आ रहे हैं, निकट आ रहे हैं, निकट आ रहे हैं, क्या करते हुए, दुरंतम दिन पापम मोचयन ब्रज गवा, ब्रज की गऊओं का, हम लोगों का दुरंतम ताप, जो श्रीकृष्ण दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपाय से जिसका नाश नहीं हो सकता, अंत नहीं हो सकता है, ऐसे दुरंत दिन ताप को, दिवस विरह जनित ताप से मुक्त करते हुए आ रहे हैं। जिस प्रकार चंद्रमा उदित होता है तो दिन भर के जलन को मिटा देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण वृंदावन से ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, तो दिन भर के ताप को, दिन तापम, अब उसको क्या कह सकते हैं गोपियां, जितना दुख हुआ दिन भर श्याम सुंदर को नहीं देखने के कारण, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको देख करके जो सुख हो रहा है, तो दिन भर की पीड़ा समाप्त हो गई, उनको देखने में जो आनंद है, उस वह आनंद सारे दुख को, अदर्शन जनित दुख को सब खत्म कर दिया। मोचन ब्रज गवाम, ब्रज की जो गौवे हैं हम, या ब्रज में जो बंधी हुई गौवे खूंटे पर थी, उनके दिन ताप को, दिन भर गोपाल को देखने के लिए तरसती रही, तो उनके दिन ताप को मोचन दिन, ये श्री कृष्ण आ रहे हैं, ऐसा जामनी पति जैसे चंद्रमा को उगते हुए दिखा करके कोई आदमी कहे ये जामनी पति दिन का ताप हर लेते हैं, सूर्य की किरणों से जो ताप उत्पन्न हुआ है, उसी तरह से ये जामनी पति कृष्ण चंद्र ईसह कृष्ण चंद्र कृष्ण नामक चंद्रमा उदित होते हुए वन से आते हुए ब्रज में प्रवेश करते हुए हमारे दुरंत विरह ताप को हर रहे हैं। यह है अंतिम जुगल। दिन तापम दिने तद विश्लेषजम तापम मोचयन समय जामनी पति चंद्र इव उपयाति समीपम आयाति उदयते। इस लीला को कई भक्तों ने कवियों ने गाया है कई तरह से। सबसे अधिक पदों में श्री सूरदास जी गाए हैं और परमानंद दास जो अष्टछाप के महाकवि हैं। और अर्वाचीन बहुत से आचार्यों ने भक्तों ने भी इस लीला पर गान किया है, क्योंकि यह बहुत आनंद की लीला है। सामने श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है, तो इस उल्लास में गोपियों के सुख को देख करके बहुत से कवि गान किए, जिसमें रसखानी जी का नाम इस लीला को गाने में बहुत आगे है। और हम लोग बहुत वर्षों से उनके पद को गाते रहते हैं। इस पुस्तिका के जो ब्रजभाषा सेक्शन में पहला पद है वो है, वही है ना, 27 पृष्ठ पर है, इसको थोड़ा गाएंगे। गोर जबीराजे भाल लहलही बनमाल गोर जबीराजे भाल। इसमें खुर रजह छिड़ित स्रक श्री कृष्ण की माला पर धूल पड़ी हुई है, गायों के खुर से उड़ी हुई है, चेहरे पर है, केश पर है, तो ये सखियां गा रही हैं आपस में। गोर जबीराज भाल लहलही बनमाल गोर जबीराज भाल आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु तानरी आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु तानरी आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु तानरी गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु तानरी कैसी धूप की मधुर मधुर वैसी कैसी धूनी बांसुरी की मधुर मधुर तैसी बंक छीतवनी मृदु मंद मुस्कानी रे बंक छीतवनी मृदु। जिस तरह ग्वाल बाल गाते हैं तो उसी तरह से श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर वैसी तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर वैसी बंक चितवनी मृदु मंद मुस्कानी रे बंक चितवनी मृदु कदम बीतप के निकट तट निके आय
तटनी के तट जमुना जी के किनारे आ गए हैं बिल्कुल। जमुना जी के किनारे ही पानी आदि की सुविधा से गांव बसता था। कदम भी टप के निकट तट लिखे आय कदम भी टप के निकट लिखे आय पट चढ़ी चाही थी तपट पर निरी चाहिए देखू का एक ही अर्थ है। चाही ब्रज भाषा में उसका अर्थ है देखो चाही और इसमें देखो लिख दिया गया है ठीक। अटा चढ़ी चाही थी तपट पर निरे
आटा चाही चाही
सखी अटारी पर चढ़ करके जरा पीताम्बर की फहरानी देखो किस तरह लहरा रहा है पीताम्बर।
रस बार सारे ताना तपना बुझारे नैना रस बार सारे सिरावे वह आव रस खानी रे खानीरावे वह आव रस खानी रे गोर जबीराज भाल लहले ही बन माल गोर जबीराज भाल आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु पान रे
आगे गैया
कैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर वैसी
कैसी धुनी बांसुरी की
बंक छितवनी मृदु मंदनु सुकानी रे
बंक छितवनी
मृदु मंदनु सुकानी रे
कदम भी तपके
पता चढ़ी देखती तपट फरानी रे
पता चढ़ी देखती
रस बार सारे तना तपना बुझावे नैना रस रस बार सारे तन तपना बुझावे नैना
रस बार सारे
नैना प्राण मीरी झावे वह आव रस खानी प्राण मीरी झावे वह आव रस खानी रे
प्राणी
झावे वह आव रस खानी रे प्राण मीरी झावे वह आव रस खानी रे
इस तरह से अनेक भक्तों ने इस लीला का गान किया है और श्री गोपी जनों के भाव में ही जैसे इसमें रसखानी जी कहते हैं गोपी भाव में ही कहते हैं कि हे सखी देखो प्रीतम आ रहे हैं और नयन और प्राण को रिझा रहे ठंडा कर रहे सुखी कर रहे चिंतन करके प्राण व्याकुल थे और नेत्र छटपटा रहे थे कृष्ण को देखने के लिए। तो
तो अब रिझावे नयन प्राणनी रिझावे वह आवे रसखानी। रसखानी कवि का नाम भी है और श्री कृष्ण तो रस के खान है ही रसराज हैं, तो दोनों कवि का तुलसी दल भी लगा हुआ है इसमें। कवि का नाम जब पढ़ता है तो उसको तुलसी कहते हैं, कवि अपना नाम लेता है। रस बर सवे ताना तपना बुझावे नैना, रस बर सवे नैना ताना मीरी झावे वह आवे रस खनरे प्राण। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी एक पद में इस वन से आवनी लीला सांझी लीला का वर्णन कर रहे हैं। प्रायः श्री भगवान इसी राग में बांसुरी शाम को बजाते हैं, गौरी राग कहते हैं, ऐसे ही मिलजुलत राग में बांसुरी बजाते हैं। सांझ शाम ग्वाल बाल सांझ शाम साज सज ग्वाल बाल साथ लिए, सांझ शाम सांझ शाम साज सज ग्वाल बाल साथ लिए, सांझ शाम उसमें नहीं है उसका मोहना मन ही हरि आवत हरु हरु, मोहना मन ही हरि आवत हरु। तो भारतेंदु जी के शब्दों में श्री गोपियां कह रही हैं कि मोहन मन को हरते हुए हरु हरु धीरे धीरे आ रहे हैं, गजगति से आ रहे हैं। मोहना मन ही हरि आवत हरु हरु, मोहना मन ही हरि आवत हरु हरु। और कैसे है याद है श्री कृष्ण का ही रुक गए जमुना जी किनारे। मोहना मन ही हरु आव हरि आवत हरु हरु, आवत हरु हरु। शीश मोर मुकुट लकुट कर लिए ओढ़े, शीश शीश मोर मुकुट लकुट कर लिए ओढ़े, इन्हें ओढ़े पीता ऊपर न जामे टाके चारु गोखरे, पीता ऊपर न जामे पीताम्बर ओढ़े हैं। ओढ़े मतलब डालने फहरा रहा है हवा में, ओढ़ने का सब समय अर्थ ऐसे चादर जैसा ओढ़ना नहीं होता, डाले हैं पीताम्बर। ओढ़े पीतव पर न जाने टाके चारु गोखर, ऊपर न जाने टाके चारु, जिसमें सोने की जरी की गई है पीताम्बर के किनारे किनारे। हरिचंद बेनु को बजावत है गावत सो, हरिचंद बेनु को हरिचंद बेनु को बजावत है गावत सो, आवत है लिए साथ साथ गाय बछरु, आवत है लिए साथ साथ
आवता है लिए साथ साथ गाय बछरू नाचत गुवाल मध्य लाजत मनोज सखी गुवाल मध्य लाजत मनोज सखी नाचत गुवाल मध्य लाजत मनोज लखी नाचत गुवाल मध्य लाजत मनोज लखी आव सखी बाजत गोपाल पाय घुंघरू सखी बाजत गोपाल पाय नाचत गुवाल मध्य लाजत मनोज लखी गुवाल मध्य लाजत मनोज लखी सखी बाजत गोपाल पाय गुंगर
अब आते आते वो गली में आ गए प्रवेश कर गए तो इस पर घनानंद जी की कविता है। प्रायः भगवान की इस सांझी लीला पर हम लोग गाया करते हैं जब भागवत सप्ताह होता है दशम स्कंध का।
डग मग डगनी धरनी छवि के भार डग मग डगनी धरनी छवि के भार
गोपियां कह रही हैं हे सखी प्रियतम श्याम सुंदर डगमग चलते हैं सीधा नहीं चलते। डगमग डगनी धरनी डगनी मतलब डग पदन्यास डगमग चलते हैं क्यों छवि ही के भार उन पर छवि का सौंदर्य का इतना बोझा है कि उसको संभाल नहीं पाते सुंदरता का बोझ संभाल नहीं पाते इसीलिए अब डगमग चलते बोझा बहुत है।
डगमग डगनी धरनी छवि के भार डगमग डग धरनी छवि के भार धरनी छवि ले उड़ी बन मालगी धरनी छवि ले उड़ी बन
और देखो छबीले उर पर छाती पर वक्षस्थल पर वनमाला की कैसी धरनी है कैसी लटकी हुई है वनमाला
धरनी छबिले उड़या छिवन मालकी धरनी
जो कोटि का मदन बारे उस पर बदन
सुंदर बदन पर कोटि का मदन वारो सुंदर बदन पर कोटि का मदन वारो चित चुभी चितवनी लोचन विशाल की चितवनी चित चुभी लोचन विशाल
उनके विशाल आंख की चेतावनी दिल में चुभ गई है लोचन विशाल की चेतावनी चित चुभ
चित चुभी चितवनी लोचन विशाल की काली गलियाली निकसे अचक आय काली गलियाली निकसे अचक आय कहा कहो अटक भटकते ही काल की कहा कहो अटक भटकते
ही काल की। कल इसी बेला में हमारे गली में श्याम सुंदर आ गए। काल यही गली अली निकसे औचक आए, औचक आए ही करते हुए गाय किधर चली गई, बछड़ा किधर गया, आपने देखा है। ये केवल गो संभालन के छल से श्री गोपी जनों को दर्शन देने के लिए घूमते थे उनको, और खुलम खुले देखते थे हंस करके। आपने इधर मेरी गाय को देखा है, इधर आई, ऐसी गऊ परेशान करती हैं केवल अपनी छवि दिखाने के लिए। तो याद कर रही है कल की बात।
काल यही गली अली निकसे औचक आय, काल यही गली अली निकसे औचक आय, कहो अटक भटक के ही काल के।
अरे सखी विधाता ने ऐसा सुंदर संजोग दिया, लेकिन मैं हतभागिनी श्याम सुंदर का आलिंगन नहीं कर पाई, डर रही थी कोई गुरुजन न देख ले। श्याम सुंदर बिल्कुल निकट थे, मैं उस समय की अपनी हालत को क्या कहूं, इतना आनंद हो रहा था और मैंने सोचा कि श्याम सुंदर का आलिंगन करूं, लेकिन भय के कारण मैं नहीं कर पाई। पर फिर भी उनकी उस छवि को देख करके भी
जई हाँ रोम रोम आनंद के घन छाय, भी जई हाँ रोम रोम आनंद के घन छाय, भी जई हाँ रोम रोम आनंद के घन छाय, भी जई हाँ बसी मेरी आखिना में आवनी गोपाल की, बसी मेरी आखिना में आवनी गोपाल की, बसी मेरी आखिना में आवनी गोपाल की, बसी मेरी आखिना में आवनी गोपाल की।
तो गोपाल की वह आवनी किस तरह से वे आ रहे थे मुझ पर देखते हुए, मेरे आंख में बसी हुई है, अर्थात उसी छवि को आखिर देखना चाहते हैं। तो इस तरह से ये गोपियों के दिन भर के बिरहज ताप को दूर करते हुए श्री कृष्ण परम उत्सव से ब्रज में प्रवेश करते थे। सबको बहुत आनंद होता था, प्रतिदिन एक महान उत्सव, एक महान सुख का दृश्य उपस्थित होता था, और इस तरह से श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश करते थे। वन में जब प्रवेश करते थे तो वनवासियों का आनंद बढ़ता था, वृक्ष लता प्रफुल्लित होते थे, खग मृग, और ब्रज में आने पर ब्रजवासी गांव में रहने वाले लोगों का आनंद बढ़ता था। इस तरह श्री कृष्ण उधर भी आनंद देते थे, परंतु जिधर एक तरफ आनंद देते तो उधर दूसरे तरफ बिरह में सब दुखी रहते, परंतु उनके मिलन का सुख सब समान कर देता था। बल्कि कभी कभी मिलन का सुख इतना ज्यादा होता था कि बिरह के दुख का स्मरण नहीं रहता था। तो मोचन दिन तापन, दिन भर के बिरह ताप को दूर करते हुए ये चंद्रमा उदित हो रहे हैं। प्रायः भगवान के स्वरूप की तुलना चंद्रमा से की जाती है, इसलिए कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, गौर चंद्र, चंद्र है। गौर चंद्र में क्या चंद्रत्व तो है, सौंदर्य तो है ही, लेकिन वे अंधकार का नाश किए, जीव की वासना, सांसारिक वासना का नाश किए, कृष्ण प्रेम वासना भर दिए, अज्ञान तम का नाश किए, और श्री कृष्ण विरहज ताप को दूर कर रहे,
दिन भर के ताप को दूर करो। वैसे अज्ञान नाश तो सभी स्वरूपों में है, भगवान श्री कृष्ण को देख करके उनका ज्ञान होता है और प्रेम बढ़ता है तो स्वाभाविक है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष ये कार्य है जीवों के अविद्या अज्ञान वासना आदि का नाश कर देना। कैसे नाश करते हैं? दो अस्त्र हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो सांगो पांगास्त्र पार्षदम अंग उपांग अस्त्र और पार्षद चार के साथ वे उतार लेते हैं। तो अस्त्र है भगवान नाम और श्रीमद भागवतम, ये चैतन्य चरितमृत में लिखा गया, ये दो अस्त्र हैं जिनके द्वारा वे तम का अविद्या का वासना का जो एक सेना की तरह है उसका नाश करते हैं। और उनके अंग है श्री नित्यानंद प्रभु, उपांग श्री अद्वैताचार्य जी, और पार्षद श्री वासादी गौर भक्त वृंद, ये सब पार्षद हैं। इस अवतार में भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया ऐसे खतरनाक काटने मारने वाला, हरिनाम एक अस्त्र है और श्रीमद् भागवत इन अस्त्रों को सुनना पड़ता है, गाना पड़ता है, इसी से काम हो जाता है अविद्या का हरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक श्लोक रह गया, उसकी व्याख्या करेंगे बाद में, कुछ गीत होने के बाद मेरी भी इच्छा है कि मैं कुछ गीत सुनूं। तो कोई आवश्यक नहीं है कि यही लीला गाई जाए, श्री कृष्ण की जो लीला गाने की इच्छा हो, थोड़े थोड़े समय में भक्तों को अवसर दिया जा रहा है। परम पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पद्दार जी का रचा हुआ पद है जिसे भक्तवत्सल और साथ में इस आवनी लीला पर गज प्रवेश लीला पर भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पद्दार लिखे। बहुत से भक्तों को पता नहीं होगा कि भाई जी हनुमान प्रसाद पद्दार कौन है, तो भाई जी हनुमान प्रसाद पद्दार भगवान राधा कृष्ण के परम सिद्ध भक्त हैं और श्रील प्रभुपाद के साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था। अमेरिका जाने के पहले भागवत के प्रथम खंड को डालमिया ट्रस्ट से छपवाया भाई जी ने, प्रभुपाद जी को दिया अमेरिका ले जाने के लिए। अमेरिका से जब प्रभुपाद जी लौटे तो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति भाई जी के पास वे गए जिन्होंने, और एक और अच्छे घनिष्ठता है कि इस्कान पत्रिका का यह नियम, कल्याण पत्रिका का यह नियम है, जयदयाल गोविंदका जी ने बनाया, इसमें जीवित व्यक्ति का फोटो नहीं छापा जाएगा कल्याण में, आज तक नहीं छापा, लेकिन भाई जी ने इस नियम का अपवाद किया। प्रभुपाद जी के शिष्यों का और प्रभुपाद जी का उन्होंने चित्र छापा और भूरी भरी प्रशंसा किया कि ये स्वामी जी जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई जी को श्रील प्रभुपाद जी को सबसे अधिक जिस व्यक्ति ने सपोर्ट किया वो है भाई जी हनुमान प्रसाद पद्दार। भाई जी के अंतिम दिनों में मैं गोरखपुर में था 10 दिन और प्रभुपाद जी प्रतिदिन भाई जी से मिलने आते थे उनके रूम में, दोनों के चित्र भी हैं, तो मुझे सौभाग्य मिला है दोनों के संग का। और वास्तव में भगवान कृष्ण के प्रेम का जो कुछ भी बीज पड़ा है वो भाई जी की देन है, उन्हीं के कृपा से भगवान कृष्ण में श्री राधा रानी में कुछ आकर्षण हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं। ऐसे भाई जी ने समय समय पर अपनी भक्ति के भाव के अनुसार कुछ पदों की रचना की है, जो पद रत्नाकर नामक ग्रंथ से प्रकाशित है, ग्रंथ के रूप में प्रकाशित है। उस ग्रंथ में कई पद आवनी लीला के हैं, वो आवनी लीला गाई जाएगी। वैसे सबसे पहली बात तो यह है कि एक महान वैष्णव, एक महान भगवत प्रेमी के द्वारा वो पद लिखा गया है। भावराज भाव के समय जब भाव होता था तब लिखते थे, भाव उमड़ता था तो लिखते थे, केवल कविता के लिए नहीं लिखते थे भाई जी। और कोई उनको गुरु कहना चालू किया, कोई बड़ा व्यक्ति कहना चालू किया तो कहे नहीं मैं सबका भाई हूं, भाई जी से सभी भाई जी कहते थे। यहां तक कि उनकी पुत्री भी भाई जी कहती थी, सावित्री बाई, हम लोगों ने सुना है। इतने मिलनसार और मूर्तिमान प्रेम थे वे भगवान श्री कृष्ण के, मूर्तिमान प्रेम उनका एक पद है।
Thank you.
पहले शब्द उच्चारण गलत करता नीलमणि नहीं नीलमणि नहीं नीलमणि नीलमणि
Thank you.
हरे कृष्णा, उस पर पढ़ो कि हर्ष विकार है या दीर्घ विकार है। नीलमणि बोल रहे हो, नीलमणि इसको बोल रहे हैं ऐसे है। नीलमणि नहीं, नीलमणि नी दीर्घकार दीर्घ है। सारा सारा पद नीलमणि पर ही आ रहा है। नीलमणि नीलमणि श्री कृष्ण को कहते हैं नीलमणि। ये क्या उच्चारण, कथा होगी। श्री शुक उवाच एवं ब्रज स्त्रियो राजन् कृष्ण लीलानुगायति रेमिरेह सुतचित्तः तन्मनस्का महोदया। पुनः गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित की सभा में आइए, जहां श्री वसुदेव गोस्वामी बोलते हैं। श्री शुक उवाच हे राजन तत्चित्ताः, तस्मिन् श्री कृष्णे चित्तम चेतना जीवितम जैसा मता है। तन मनस कह तस्मिन् मन जैसा मता है। महोदया महान उदय उत्सव जैसा मता है। ब्रजस्त्रिय अहसु तद विरह मयेषु अपि दिनेषु एवं विरह दुखे नापि उक्तानुरूपेण कृष्ण लीला गायति ही कृष्णस्य लीला अनुगायन्त्य किंवा नु अहो कृष्ण लीला एव गायति गायन्त्य गोप्य रे मेरे जात निवृत्ति प्राय बभूव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे जुगल गीत वर्णनम नाम पंच त्रिंशोध्याय। श्रील सुखदेव गोस्वामी आप उपसंहार करते हुए कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, राजन ये संबोधन है। राजन का अर्थ है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। राजन जो राज विराजे उसको राजन संबोधन। कृष्ण प्रेम से कृष्ण कथा के प्रति प्रेम होने से आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। वास्तव में जीव की यही सुंदरता है, भगवान से प्रेम हो, आसक्ति हो, और विशेष करके उनकी वार्ता से, उनकी गाथा से, कथा से प्रीति है तो वह व्यक्ति सुंदर लगता है। यही जीव की शोभा है। तो महाराज परीक्षित राज्य त्याग चुके थे, अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठे हैं और कई दिन से, लगभग 5-6 दिन से, 4 दिन से उपवास चल रहा है उनका, पानी भी नहीं पिए, लेकिन फिर भी वे बहुत सुंदर लग रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म में होता है, अपने स्वधर्म में होता है तो वह व्यक्ति अच्छा लगता है। जीव का स्वधर्म है भगवान की भक्ति करना। भक्ति में प्रथम श्रेष्ठ भक्ति है श्रवणम, श्री कृष्ण के विषय में सुनना। महाराज परीक्षित तन्मय होकर के इस कथा को, श्री गोपिका जुगल गीत को सुन रहे हैं। अंत में संबोधन करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, हे राजन। एक विचित्र बात है कि श्री सुखदेव गोस्वामी उस सभा में किसी अन्य को कभी भी संबोधित नहीं किए, महाराज परीक्षित को ही संबोधित कर रहे थे। कथा में सहस्रों लोग बैठे थे और एक से एक बड़े ऋषि मुनि, जिसमें भगवान वेदव्यास देव, सुखदेव गोस्वामी के पिता श्री स्वयं बैठे थे और वही उनके गुरु थे, पिता और गुरु दोनों, और श्री नारद जी वेदव्यास देव के गुरु सभा में बैठे थे। भगवान परशुराम अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। जो भी ऋषि मुनि आए थे सब शिष्यों के साथ, बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, लेकिन बड़े स्नेह से सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ही संबोधित कर रहे थे। समग्र श्रीमद् भागवत में देखिए, ऐसा कभी नहीं संबोधित करते हैं कि हे सभासदों, हे ब्राह्मणों, जबकि सूत गोस्वामी संबोधन करते हैं विप्राहा, चौनक जी का संबोधन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नैमिषारण्य में एकत्रित ब्राह्मणों को भी, साधुओं को भी वो संबोधित करते जाते हैं, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित पर ही दृष्टि रखते, स्नेह से देखते थे। तो कहते श्री गोपियों का, श्री गोपियां कैसी थी, तत्चित्ता तस्मिन् श्री कृष्णे एव चित्तम चेतना जीवितम जासम था। श्री कृष्ण में ही उनका जीवन था, श्री कृष्ण से ही जी रही थी। चित्त का यहां पर अर्थ चेतना, श्री प्रसिद्ध सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते चेतना जीवन तत्व, श्री कृष्ण के साथ होकर के ही जी सकती थी। भले मछली जी जाए बिना पानी के, सर्प बिना मणि के जी जाए, लेकिन गोपियां बिना कृष्ण के जी नहीं सकती। कृष्ण ही उनके जीवन है। तो तत्चित्ता और तन मनस्का श्री कृष्ण में ही उनका मन रमता है। श्री कृष्ण की लीलाओं से ही, लीलाओं में ही मन सुख मानता है। और महोदया है, इस तरह से महान उत्सव में वे हुई। महोदया, महान उदय, उदय का अर्थ होता है उत्सव, आनंद, उत्कर्ष, सुख। महान उदय उत्सव जासंता ब्रज स्त्री, ये ब्रज की स्त्रियां। ब्रज स्त्री श्रील सुखदेव गोस्वामी बार बार कहते हैं ब्रज स्त्री, ब्रज की स्त्रियां। ब्रज की स्त्रियां मतलब श्री गोपियां, जो सहज ही प्रेम स्वरूपणी हैं, सहज प्रेममयी हैं, श्री कृष्ण प्रेममयी। वे इस तरह से दिन में श्री कृष्ण से विरह होता था, उस विरह दुख को इस तरह कृष्ण की लीला गा करके पार करती थी। शुरू में भी सुखदेव गोस्वामी ने ऐसी बात कहा, बड़े कष्ट से दिन बिताती थी। एवं विरह दुखेन अपि उक्त अनुरूपेण कृष्ण लीला गायती, विरह के दुख में होती थी, लेकिन लीला का ऐसा आकर्षण है, कृष्ण लीला भी लगभग कृष्ण जैसी सुख देने वाली, लगभग मैं गलती बोल दिया, पूरा पूरा कृष्ण स्वरूप है। तो कृष्ण का संग होने पर, उनका दर्शन होने पर जो सुख मिलता है, वही सुख उनकी लीला गाने पर भी मिलता है। जो सुख हो तो गोपाल ही गाये, सो सुख हो तो जपतप किन्ने कोटिक तीरथ न्याय। सूरदास जी देखते हैं कि जो सुख है गोविंद के गान में होता है, उनकी लीला गाने पर, वह सुख जप में, तप में, जप मतलब भगवान नामांतर, भगवान नाम के अलावा ये मंत्र वैदिक सब जप, सो सुख हो सो नहीं हो जप तप किन्ने कोटिक तीरथ न्याय। एक तीर्थ नहीं करोड़ों तीर्थों में डुबकी मारे, वो सुख नहीं मिलता, बल्कि तीर्थों में कम कम ठंडा मार देता है, जो सुख क्या मिलेगा। जो सुख हो तो गोपाल ही जाए। तो कृष्ण के विरह में झुलसती हुई से गोपियां कृष्ण लीला का आधार ले रहे, कृष्ण लीला का आधार। कृष्ण लीला अनुगायती या नु गायती, नु उपसर्ग है, अथवा अनुगायती, इस तरह निरंतर गाती रहती थी, अनुगायंतर किंवा अहो कृष्ण लीला एवं गायती। नु का अर्थ अहो, अहो कृष्ण की लीला ही गाती रहती थी। कृष्ण उनको छोड़ करके वन में चले जाते थे, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, कृष्ण की लीला ही गाती थी। और कोई घर की बात, अपने परिवार की बात, काम धंधा की बात कभी भूल कर नहीं करती थी। भूल से भी उनका चित्त चला जाए घर गृहस्थी में और वाणी से कुछ बोल दे तो सुनाई मुझे, यह है भक्ति। भूल से भी कृष्ण के अलावा और कोई वर्णन न निकले तब माना जाएगा कि हाँ अब भक्ति स्थिर है। नहीं कहीं मिल गया अखबार, अखबार बांचने लगे और वर्णन भी कर लगे, दिल्ली में यह हुआ च, ये हुआ च, लखनऊ में ये हुआ च, यह बोला यह बोला, ये वहां पर सब ये संसारिक लोग वाच करते। श्री सुख वाच गोप्य ऊंचू ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां साधन का संकेत नहीं है। साधन राज से बहुत परे भाव राज्य की चीज है। साधन का संकेत तो इस जगत में किया जाता है, लेकिन फिर भी हम भक्तों को ऐसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कृष्ण लीला अनुगाय, कृष्ण की लीलाएं ही गाती हैं, और रे मेरे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बड़े कष्ट से दिन बिताती थी प्रथम श्लोक में, और इस श्लोक में कह रहे हैं कृष्ण लीला गाते हुए रे मिरे रमती थी, रमण का अर्थ है आनंद में होना, इसका अर्थ है जात निर्वृत्ति प्राय, प्राय दुख खत्म हो जाता था, प्राय आनंद में हो जाता था। कृष्ण की लीला गाने में कृष्ण के संयोग का अनुभव होता था, वो वेणु वादन का स्मरण और कृष्ण की लीला, उनके स्वरूप की स्फूर्ति ऐसी होती थी, तो उन्हें कृष्ण के संयोग से आनंद मिलता था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि रे मिरे रमण करते थे, जात निर्वृत्ति प्राय बहु। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं जात निर्वृत्ति, निर्वृत्ति मतलब से प्राय, प्राय सुखी हो जाते थे। तो इस तरह से गोपी का जुगल गीत पूरा हुआ। कल अरिष्टासुर का वध किया जाएगा, राधा कुंड की उत्पत्ति होगी और श्री नारद जी कंस के पास आएंगे। वे प्लान बना दिए थे, भगवान की इच्छा को जानते हैं, भगवान चाहते थे अब ब्रज में तो लीला करेंगे या करते ही रहेंगे, लिख के मथुरा में लीला करनी है, कुछ भक्तों की रक्षा वहां करनी है, द्वारका में रक्षा करनी है, और इसके साथ साथ पृथ्वी का कुछ लोड भी खत्म करना है, जो पृथ्वी का भार हो गया था असुरों का वध। यहां भी ब्रज में भी असुरों का वध करते ही रहते थे, लेकिन अभी बहुत असुर बाकी थे, उनका नाम पढ़ेंगे नारद जी, लिस्ट पढ़ेंगे, ये आप काम करेंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, सब उन्होंने सुना दिया भगवान। वो भगवान की इच्छा को ही बोल रहे थे, जैसे कोई आदमी अपना रूटीन बना रहे कि ये करना है वो करना है, लेकिन फिर भी कोई उसका प्रेमी भक्त शिष्य उसको बता रहे कि आपको ये करना है। श्री नारद जी भगवान की दिनचर्या को पढ़ रहे हैं, आगे होने वाली लीला ये स्पष्ट कहते हैं कि मैं परसों कंस का वध देखूंगा देखूंगा, हमेशा वो कहे दक्षामि द्रक्षे, मैं देखूंगा देखूंगा, मैं कंस का वध देखूंगा, कुबला पीड़ित हाथी का वध देखूंगा, पहलवानों का वध देखूंगा, उसके बाद शंखासुर का वध देखूंगा, कालजवन का वध देखूंगा, मुचकुंद महाराज के द्वारा कालजवन और मूर नरक भौमासुर का वध देखूंगा, और मूर उसका सेनापति था भौमासुर का, ऐसे देखूंगा, फिर काशीपुर का दीपनम देखूंगा, काशीपुर को आप जलाएंगे, और पौंड्रक का वध करेंगे, मिथ्या वासुदेव, और पौंड्रक काशी का राजा था जो बांह बनवा लिया था फालतू दो और शंख चक्र गदा पद्म धारण किया, वो कृष्ण के पास लेटर लिखा पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैं अवतार लिया हूं, मैं वासुदेव हूं, तुम में नकली वेश छोड़ो, नकली सब अपना अस्त्र शस्त्र धारण करना छोड़ो। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं छोड़ूंगा, उसके बाहों पर ही छोड़ा, बांह काट दिया चक्र, सब बांह का जो उन्होंने गला भी काट दिया, वसुदेव खत्म हो गए ये भगवान बनते थे, तो वो भी मैं देखूंगा, इसके बाद आपका विवाह देखूंगा। शुरू में ही कह रहा हूं मैं पारिजात का अपहरण और पारिजात हरण और विवाह देखूंगा, समस्त राजाओं का मान मर्दन देखूंगा रुक्मिणी जी के विवाह में, और अंतिम लीला आपकी होगी कि कुरुक्षेत्र में समस्त राजाओं को क्षत्रियों को जुटा करके एक साथ ही पृथ्वी का भार आप दूर करेंगे, अर्जुन और भीम में शक्ति दे करके, ये लीला मैं देखूंगा। और उधर वसुदेव जी को जेल में करवा करके आए कृष्ण के पास, तो बहुत भाई भय हो रहा है, कभी कभी कहीं भगवान रंज नहीं हो गए कि मेरे पिता को जेल में बंद करवा करके इधर आकर के बात बना रहा,
तो भगवान की स्तुति किए हैं। एक भी श्री नारद जी भगवान के मनो अवतार हैं, भगवान के मन में जो होता है वही नारद जी करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। स्तुति किए तो पहले कंस के पास आएंगे, इसके बाद किसी के पास जाएंगे नारद जी। कंस से प्लान बनवा देंगे कि कृष्ण बलराम को कल लाना है, ये रथ ले गए अपनी जी को कहा कल आ जाना चाहिए और परसों कंस का वध होना है। ये कृष्ण से कहा, कंस से भी कहे कि कृष्ण बलराम को जितना जल्दी हो बुला लो, अपने स्थान पर बलवान है, वृंदावन में अपना स्थान अपने गली का कुत्ता भी शेर होता है, तो इतने तुम्हारे आदमी बकासुर धनुकासुर अघासुर सब मारे गए केवल स्थान के बल से, नहीं तो कृष्ण बलराम में कुछ नहीं है, केवल स्थान बलवान होता है। जैसे मगर है नक्र है, अगर पानी में रहे तो बड़े बड़े गजराज को भी खींच लेगा, और स्थल पर हो जाए तो कुत्ते भी नोचेंगे उसको, कुछ नहीं कर सकते, स्थान बलवान होता है। इसलिए उनको अपने स्थान में अपने किला मथुरा में बुलाओ, यहां तुम्हारा बल चलेगा। और श्री नारद जी चाहते थे कि ये मारा जाए, उसके सारे सैनिक वगैरह मंत्री वगैरह मारे थे। तो कल ये कथा आएगी, पहले अरिष्टासुर जो असुर बैल बनकर के विशाल पर्वताकार बैल बनकर के आया था, वो किसी का वध नहीं कर सका, लेकिन सारे ब्रजवासी थर मार लिए, बहुत कांपने लगे, बहुत भयभीत हो गए। भगवान उस बैल से युद्ध किए, कोई डंडा लेकर के नहीं, वो सिंह से युद्ध कर रहा था, भगवान अपने हाथ से युद्ध कर रहे थे। श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, कोई विकराल सांड से तीक्ष्ण श्रृंग वाले से हाथ से लड़ेगा? ये 11 वर्ष के 10.5 वर्ष के बच्चे थे और बैल से लड़ गए, उसका सींग उखाड़ करके उसे पीट पाट कर मारते, ये लीला आएगी। हरे कृष्ण जय श्री।